નિયમ સાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 165
ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ
નમઃ
સિદ્ધેભ્ય
ઓમ નમઃ
સિદ્ધેભ્ય
શુદ્ધાત્મને
નમઃ પ્રણમો અરિહંતાણમ પ્રણમો સિદ્ધાણમ
નમો આયરિયાણમ
નમો વજ્રાયાણમ નમો લોયે સૌવસાહુણમ નમિઊણજિનમ વીરમ અનંતવર્ણાનદંશનસહાવમ વોચ્ચામિ નિયમસારમ કેવલી સુદ કેવલી ભણિદમ.
આચાર્ય શ્રી કુંદકુંદ ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભ મરધારી દેવ ને તાત્પર્ય વૃત્તિ ટીકા લિખી હૈ. ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ वे कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से अपने हाथ में है. इस तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 97 पर हम आ गए. 97 ये बीच में जो बोल्ड लेटर से पैराग्राफ शुरू होता है वहां से हम शुरुआत करते हैं. ते मुनि क्लेश जाने समूलगी बाड़ी नाके छे. ये मुनियों के अलग अलग विशेषण बता रहे थे. वो जो आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने जो श्लोक लिखा है उसमें बता ना निश्चित अध्यात्म सार है. वो लास्ट लाइन के वो पहला उन्होंने बताया अध्यात्म का सार. फिर यम नियम नितांत उनके यम नियम ने अंतरंग में स्थिरता उसको यम नियम कहा था. और अंतर्बाह्य शांत उपशांत है शांत बाह्यांतर आत्मा. फिर परिणमित समाधि लिखा था. और सत्व सर्व सत्वानुकंपी विहित हितमिताशी उसकी भी बात हो गई है. अब कहते हैं क्लेश जालम समूलम और दहति निहत निद्रो की भी बात हुई थी. तो ये अंत में बता रहे हैं ते मुनि क्लेश जाने समूलगी बाड़ी नाके छे. कषायना अंशने तो बाड़ी ने राख करी नाखे छे एने या मुनि कहेवामां आवे छे. आ मुनिपणु छे. અહીં કહે છે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં થઈ ગયું કેવળ જ્ઞાન. ક્યાં ખા એ માન્યતા હૈ ને કેવા કર્માપુત્ર શ્વેતાંબરમાં આવે છે. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું. મુમુક્ષુ કહે તે ભરત મહારાજને થયું પછી એને ન થાય. ઉત્તર ભરત મહારાજને કાંઈ થયું નથી. નગ્ન થયા પછી મુનિપનું આવ્યું છે. ભરત ચક્રવર્તી જબ કહેંગે પણ વો ચક્રવર્તી પર છોડકર મુનિ હુએ ઓર તબ જાકે વો બાદ મેં કેવલ જ્ઞાન હુઆ. ઓકે કમબારી મેં કિસી કો હોતા ઘર મેં કિસી કો હોતા વો તો વો ક્યા હૈ વો કઈ કઈ સ્ટોરી સુની હમને બહોત સારી. સ્ત્રીઓં કો હોતા હૈ યે સબ ક્યા હૈ ગપ ગપ જિસકો કહેતે હૈ ભ્રમણા હૈ. કે નગ્ન દશા વિના અંતરથી મુનિપણું પ્રકટ થાય જ નહીં એક વાત. અને એકલું નગ્નપણું હોય એને પણ એને મુનિપણું હોય નહીં. એને વિના બાહ્ય દીક્ષા વિના તો અંતર. પેજ નંબર 97 સેન્ટર વાળા પેરેગ્રાફ ઉત્તર વાળા કે દિગંબર મુનિ દીક્ષા લીએ વિના મુનિપણા નહીં હોવા. और बाहर में केवल वो बारीग्रह त्याग किया इसलिए मुनिपना हुआ ऐसा भी नहीं है. अंतरंग में उतनी वितरागता होनी चाहिए. अंतर दशाना भान अनुभव विना वितरागता विना मुनिपनु हो सके नहीं. कर्मापुत्र केवल ही था माँ बाप ने कारण गृहस्थ आश्रम में रहा ये उनकी मान्यता बता रहे. लोको शाख लाव्या छरी नौती मरती केवड़ीए कहूं एक छरी કોઠીની પાછળ છે. કહો આ વાતે કાંઈ આવા કે ઓળખ્યા નહીં. હા ચાકુ સુરી वो केवल ज्ञान हुआ था ना, उन्होंने बता दिया कहाँ है। ऐसा होता होगा शायद, मुझे मालूम नहीं उनकी स्टोरी क्या है। आवा केवल ज्ञानी श्वेतांबरमा ए बात छे। मुमुक्षु पाछी परीक्षा मा उत्तर भणवामा एनी परीक्षा ले, एनी टीका करी हती। घणा वर्षनी बात छे, अमे भावनगर हता, समत 1977 पछी 1983 बोलो बेरिस्टर नो तो कोई खुशाल, एने टीका करी हती। 1983 नी साल मा अमे मुंबई थी भावनगर आव्या त्यारे के पण आवा केवड़ियो ठराव्या छे, कई गप मार्या छे के नहीं, कोई विचार करता नथी। एक कुंवरजी भाईए मने कीधुं, कुंवरजी आनंदजी एने लख्युं, पण आ विचार तो करो, केवल ज्ञानी गृहस्थ आश्रम मा रहे अने ए छरी बतावे, शाक ने मोड़वा जोईती थी, शू कहो छो आ तमे। मुनि कोने कहे बापा, ए तो वनमा रसनारा वनना वाघ। आहा, जेने कपड़ानो एक टुकड़ो न होय, कपड़ा की बात क्या है, एक धागा नहीं होता है। अने समाधि 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 आनंद मा तरबोल एने कहे छे। मुनि का ये स्वरूप है तो केवल ज्ञानी का कितना होगा, कैसे बात होगी, और कैसे भी कहीं पर किसी को भी केवल ज्ञान हुआ कुछ भी लिख देते हैं ऐसा, और लोग उसको मान लेते हैं। हाँ, पहले मानते थे क्योंकि वही सुना है, और धर्म के नाम पर जो सुनते हैं उसको सच मानते हैं। अब अन्य धर्मों में क्या हुआ, मुसलमानों के या अन्य भी, वो तो ये ऐसा करो उनको मार दो तो तुम जन्नत में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। पूछ ना, ये पहली बार नाम सुना, कर्मा पुत्र कुछ पता नहीं, कुछ होगा क्योंकि उनका तो सारे ग्रंथों का अभ्यास था, गुरुदेव ने सारे श्वेतांबरी सानवासी सारे ग्रंथ पढ़े थे, तो उनको मालूम है वहाँ कहाँ क्या है स्टोरी और कहाँ क्या मान्यता है।
भरत महाराज का वो तो क्या कुछ हीरा बीरा मिल गया रिसा भवन में, और उसको क्यों हो गया
वैराग्य आया तो घर में बैठे बैठे ऐसा होता है क्या किसी को केवल ज्ञान मुनिपना के बिना? मुनि कोने कहे बापा, ये तो वनमा वसनारा वनना वाघ, जेने कपड़ा नो एक टुकड़ो न होय, मिला क्या? અને સમાધિ 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 આનંદમાં તરબોળ એને કહે છે કે ક્લેશ જાળનો તો નાશ કરી દે છે। હા હા, શાંતિ શાંતિ શાંતિ। અભી શ્લોક 86। પહેલે દેખ લેતે હૈ 86 નંબર। भुक्त्वा भक्तं भक्तहस्ताग्रदत्तं ध्यात्वात्मानं पूर्णबोधप्रकाशं तप्त्वा चैवं सत्तपः सत्तपस्वी प्राप्नोति धाम मुक्तिवारांगनां सह। बरोबर पढ़ेंगे। भुक्त्वा भक्तं भक्तहस्ताग्रदत्तं ध्यात्वात्मानं पूर्णबोधप्रकाशं तप्त्वा चैवं सत्तपः सत्तपस्वी प्राप्नोति धाम मुक्तिवारांगणां सह। वही 63वीं गाथानी टीका पूर्ण करता टीकाकार मुनिराज श्लोक कहे छे। श्लोक अभी हमने पढ़ा, उसका श्लोकार्थ। ભક્તના હસ્તાગ્રથી અને હાથની આંગળીઓથી દેવામાં આવેલું ભોજન લઈને, અને ભક્ત જીસકો દેતે હૈ ઉસકો લેકર પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રકાશવાળા આત્માનું ધ્યાન કરીને, એ રીતે સત તપને અને સમ્યક તપને તપીને सम्यक तप क्या है? अंतरंग में जो स्थिरता है वही सम्यक तप है। ए सत तपस्वी, ये साचो तपस्वी दैदीप्यमान मुक्ति वारांगना ने, मुक्ति रूपी स्त्री ने प्राप्त करे छे। अभी उसके ऊपर प्रवचन। ये जो पद्म प्रभु मल निहरे देव है ना, उन्होंने ये 86 नंबर, ये कलश तो उनके द्वारा लिखे हुए हैं। अभी उसके नीचे पढ़ते हम प्रवचन को पढ़ेंगे। श्लोक तो पढ़ा हमने। कहे छे के धर्मात्मा संत भगवान वीतरागना मार्ग में आवा संत होय छे, एनी पहली समझण श्रद्धा तो करवी पड़शे के नहीं। जेने तेने साधु माने अने जेने तेने गुरु माने मिथ्यात्व में पड़ियो छे। मनीषाबेन को भी हंसी आती है। देखो जब सही बात पता चलते हैं तो हमारे ही पूर्व के मूर्खपना के ऊपर हम ही को हंसी आती है ना। फिर भी सुनकर भी वही मूर्खता अगर चालू रखेंगे तो हमारे जैसे अभागे हम ही। ख्याल में आती है ना। मूर्ख तो है ही ऑलरेडी, पर उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते। अवसर तो मिला है कि सच्ची बात सुनी है, फिर भी वो मूर्खपना छोड़ना नहीं चाहता। हाँ ना, वही तो। ख्याल में, अवसर इतना बड़ा अच्छा मिला है, फिर भी वो पहले की मान्यता नहीं छोड़ना चाहता। भले किसी के नाम पर हो, किसी के डर से कहो, किसी के दिखावे के लिए है, हाँ, लोभ से कि मारे सारे रिश्तेदार तो उसको मान रहे, मैं कैसे इसको मानूं। अभी स्वामी जी तो उनके मानने वहां थे, वहां के तो मुनि बने थे और उनको सुनने वाले 10,000 लोग तो एक एक सभा में आते थे। ऐसा फिर छोड़ दिया, क्योंकि जो झूठा था तो उसके यश के लिए वो झूठेपना को अगर चालू रखते, लोग कहते भी थे आपको जो कहना है वो कहो, जो पढ़ना है वो पढ़ाओ, मगर आपका संप्रदाय मत छोड़ो। क्योंकि उन्होंने छोड़ा, उसका अर्थ क्या है कि उसमें कुछ बात नहीं है, माल नहीं उनके पास, तभी तो छोड़ा। ऐसा हुआ ना, क्योंकि वहां मुनिपना मानते थे, वो छोड़कर यहाँ के श्रावक हो गए। उसका अर्थ क्या है कि वहां सब सारा झूठा ही चल रहा था और वो झूठ बात उनको सहते नहीं थे वो।
यानी इसको कितना बड़ा पुरुषार्थ कहेंगे।
बिल्कुल।
हम तो हमारे सगे वाले को कुछ लगता है क्या, हमको लोग क्या कहेंगे, ऐसा करके
यानी समाज क्या कहेगा। पहले हम मानते थे वो हमारे मित्र है, वो कोई साधु हो, बहुत हमारे उनके सच्चे भक्त थे, अब उनको नहीं मानेंगे तो कैसा बुरा लगेगा। ये इस बात पर चलती है बातें। आपकी बात नहीं कर रहे, समाज में ऐसे बहुत सारे लेख है, और केवल वो स्थानकवासी या श्वेतंबर की बात नहीं, दिगंबरों में भी ऐसी बात चलती है। इसलिए कहते जेने तेने साधु माने। श्लोकार्थ नीचे लास्ट लाइन, भक्तना हस्ताग्रथी एटले हाथनी आंगळीओथी देवामां आवेलू भोजन लईने जो आत्मज्ञानी शांति समाधिमां झूले छे, भिक्षा लेवा जाय छे। श्रमण कहते ना भिक्षा ने, वो तो आजकल की जो भीख मांगना वो बात नहीं है, पहले इसको भिक्षा कहते थे और भिक्षुक कहते थे, श्रमण कहते थे। त्या भक्तना हस्ताग्रथी एम लीधुं, जेवा तेवाने घरे नहीं, गुणधारी श्रावक होय भक्त होय त्या आहार ले एम कहे छे। क्योंकि नवदा भक्ति से कौन बुलाएगा? जो भक्त है, जिसको पद्धति मालूम है वही तो बुलाएगा, जिसको श्रद्धा है, जिन धर्म पर और जिन मुनि, जो उसकी जो बात होती है मुनियों का स्वरूप की, वही उनको इस तरह से भक्तिपूर्वक आहार देगा। ये पहला आवी गयु छे ने, 8 गुण सहित, गुण सहित आवी गयु श्रावक ना 8 गुण सहित। ये दातार के 7 गुण बताए थे ना, हाँ 8 क्यों लिए? यह समय दृष्टि के 8 गुण होते हैं, वो लिए हो गए। हाँ, वो उसको भी कह सकते 8 गुण सहित। जैन साचा श्रावक होय अने भक्ति करनारा, भक्ति पराने दे के आम करे एम नहीं, भक्तना हस्ताग्रथी। बे वात, एक तो धर्मात्मा नो भक्त होय अने हस्ताग्रथी हाथ थी बीजाने हुकुम करे एम नहीं, लो महाराज पधार्या छे वोरावो एम नहीं, ए त्यां आवेज नहीं, ए तो पधारो 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 एवा मान थी, आ तो महामुनि परमेश्वर छे, अंतर आनंद में कल्लोल करे छे। हा हा, आहार नो एक विकल्प आव्यो, ए पण विकल्प नो स्वामी अने आहार लेवाना स्वामी नथी, एना ज्ञाता दृष्टा छे। जुओ आ वीतरागना मुनि, आहा हा, आ साधुपणो। भोजन लईने, देवामां आवेलू भोजन लईने जोयू ने, हाथनी आंगळीओथी एम पाछू आम हाथ लईने आपे छे ने, हाथनी आंगळीथी आपे छे, आम हाथमां आपे छे। पूर्ण ज्ञान प्रकाशवाळा आत्मानुं ध्यान करीने जो, बार वात लीधी जरी आहारनी। भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञाननो पिंड प्रभु, एनुं ध्यान करीने। अभी यहाँ वो तो भोजन संबंधी बात है, इसलिए भोजन करके आहार लेके फिर ध्यान करते ऐसी बात है। ये तो ध्यान करने के लिए आहार लेना देखो है ना, पहले आहार करेंगे फिर, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। ये समिति उनका वर्णन चल रहा है यहाँ। ऐसा क्या क्या देखो देखो, आपका प्रश्न है पौने पौने सेकंड के छठा सातवा, छठा गुण स्थान बताया, सातवा तो उसके आधा प्रमाण बताते हैं। तो वो भोजन करते करते ध्यान करते फिर बाहर रहते फिर ध्यान करते, ऐसा होता होगा क्या? तो उसके लिए उनको वो प्रवृत्ति की बात मत ले लो, शुद्ध उपयोग की बात ले लो। जैसे आप कुछ भोजन कर रहे हैं उनका चलता रहता है, जैसे जैसे आप भोजन करते हैं तो आंख खोल के करते कि बंद करके करते? खोल के, तो बीच बीच में टिमकारते कि नहीं टिमकारते? तो उसके लिए कितना समय लगता है? वो तो नहीं के बराबर, वो तो हम तो डायरेक्ट सब देख रहे हैं और बीच में ऐसा ऐसा होता है, उसके लिए कितना टाइम लगता है? तो ऐसा उसका उनका शुद्ध उपयोग चलता है, बीच में आहार में विहार में वो चलता रहता है। छठा सातवा गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा है। हम बाहर की प्रवृत्ति को देख रहे, प्रवृत्ति की मत देखना, उनको शुद्धोपयोग या शुभोपयोग को देखना। वो स्वरूप ही ऐसा है उस गुणस्थान का, इसलिए छठा सातवा कहते हैं हमेशा।
खाना खाते खाते अभी
नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा विचार आता है क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, छठे गुणस्थान के अंदर अंदर आहार शरीर जाएगा आएगा वापस, फिर वो उससे भी छोटा काल है, ऐसा आहार का काल उससे छोटा नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। वो आहार विहार उसमें भी वो बीच बीच में उनका होता रहता है। हाँ,
क्या कहते हैं, टाइम में गप्पे मारते नहीं जाते,
बोलते ही नहीं ना, मौन ही रहते
हैं। यहाँ लिखा ना, देवामां आवेलू भोजन लईने जोयू ने, इतनी तीसरी लाइन, पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाला आत्मा नु ध्यान करनी जो, बाहर वात लीधी जरी आहार नी, क्योंकि वो समिति का प्रकरण, इसलिए बस आहार की बात करके फिर आगे बढ़े। भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान नो पिंड प्रभु, एनु ध्यान करीने, एना आनंद नु ध्यान करीने। पूर्ण ज्ञान प्रकाश वालो आत्मा, द्रव्य लीधु, पूर्ण बताया ना, उसमें कोई अधूरास नहीं है। मिला क्या? कहाँ देख रहे? 99 पेज है। हाँ, अभी सेकंड पैराग्राफ मिला, नीचे से दूसरी लाइन अभी। द्रव्य, द्रव्य वस्तु ध्रुव नित्यानंद प्रभु, पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाला आत्मा, मिला ना, नीचे से दूसरी लाइन उस पैराग्राफ की। पर्याय मा तो अपूर्ण ज्ञान छे, देखो ये पूर्ण ज्ञान किसको कह रहे हैं? स्वभाव को। पर्याय कैसी अभी अधूरी है, मुनिराज है ना, केवल ज्ञान कहाँ है पर्याय में? पर्याय में तो अभी अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण त्रिकाण छे, त्रिकाण यानी वो जो स्वभाव है वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, उसमें से अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलता रहेगा। ये तो स्वभाव तो परिपूर्ण है, कभी अभी जिस समय पर्याय में अधूरा ज्ञान है, विभाव रूप परिणाम चल रहा है, उस समय भी एवो पूर्ण स्वभाव भगवान, एनु ध्यान, यानी वह मैं, पहले मैंपना स्थापित किया और उसी का ध्यान करना है। निज स्वरूप नो ध्यान, लिखा है ना, निज स्वरूप, यही मेरा स्वरूप है और उसका ध्यान। अही तो एक कहे छे जो ध्यान करना है, उसी में एकाग्र होकर उसी को जानते रहना। ध्यान है वो विकल्प वाली बात, विकल्पात्मक ध्यान में ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, वो बात नहीं, उसको वो विकल्प हो रहे। ये ध्यान है डायरेक्ट उसी को जानते रहना, वो ध्यान। ध्यान करीने ए रीते सत तपने एटले सम्यक तपने तपीने लो ए सत तप ए सम्यक तप साचो मुनिपनु आत्मा पूर्ण ज्ञान प्रकाशनो पिंड एमा एकाग्रता ध्यान करवू एज सत तप छे। क्या कहा? भगवान आत्मा जो पूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप है, चीज है, वह मैं हूँ, और उसी को अपने जो पर्याय है उसी में, उसी के सन्मुख करके उसी में एकाग्र हो जाना, यही तप है और अन्य कोई तप नहीं है। एज मुनिपनु छे एम कहे छे, अंदर शब्द छे जो ए रीते सत तपने तपीने एटले सम्यक तपने तपीने आ रीते एटले ऊपर बता ने ए रीते एने ज्ञान प्रकाश एवो भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु एनु ध्यान करीने जो देवगुरु नु नहीं राग नु नहीं, राग एने विकल्प, ये जो विकल्पात्मक ध्यान है वो हो भले किसी के, परंतु तब तक उसका आत्मा का ध्यान नहीं है। वो आत्मा कैसा है, वो शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, और मैं कैसा है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये विकल्प हुए, उसको सविकल्प ध्यान कहेंगे। परंतु वो अभी ध्यान नहीं, आत्मा का ध्यान नहीं हुआ, वो विकल्प में अभी रुका है ना। तो कहते राग नु नहीं, इसलिए कहते राग नु नहीं, एक समय नहीं पर्याय नु ध्यान नहीं, कितना जान रहा है वह, मैं इतना जान रहा हूँ, ये उस पर्याय के बारे में वो भी नहीं। परमेश्वर नो मार्ग, वीतराग नो मार्ग, अनादि अनंत सत्य मार्ग आवो छे, यही एकमात्र सत्य है, अन्य कुछ नहीं है। इस तरह से मार्ग को पहले नक्की करना है। आ रीते पोतानो भगवान आत्मा पूर्ण आनंद ने, पूर्ण ज्ञान ने, पूर्ण शांति आदि एवं तत्व भगवान एनु अंतर ध्यान एनु ध्येय करीने पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा ने ध्येय करीने ध्यान करे छे ए सत तपस्वी छे ए साचा तपस्वी छे एम कहे छे। हमें तो महिमा तो भगवान की आती है, आना भी चाहिए, परंतु क्योंकि हम अभी शुद्धोपयोग में नहीं है, प्राथमिक भूमिका में ऐसा होगा भी, परंतु ध्यान उनका करने से हमें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो उनकी तरफ, उनका ध्यान, उनकी पूजा क्यों करते हैं, तो उन्होंने ये मार्ग बताया एक बात, और उनकी पर्याय की तरफ देखकर, वो पर्याय आई कहाँ से, उनके स्वभाव में से। तो हमारे, उनका क्या स्वभाव, सभी जीवों का स्वभाव एक समान है, इसलिए उनकी पर्याय को देखकर हमें अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। इसलिए भगवान को देखकर वहां से अपने सन्मुख हो जाता है जी, अपने आप होता है। अभी मुझे भगवान को नहीं देखना, अभी मुझे ऐसा कुछ, वह विकल्प वाली भूमिका वो बीच में नहीं होती है। देखो क्या कहते हैं, ए साचा तपस्वी छे, नीचे का पैराग्राफ, ए रीते सत तपने सम्यक तपने तपीने आ सत तप बे पांच दस पच्चीस अपवास बपवास करे एने आत्मानु भान नथी, ए तो अज्ञान मूर्खाई भरेलू तप छे। और दुनिया में इसी की महत्ता होती है ना, फिर उसका सत्कार भी करते, क्या क्या करते हैं ये तपस्वी ऐसा कहते हैं। बाल तपने बाल व्रत, कुनकुंदाचार्य ने नाम दिए बाल तप बाल व्रत, बाल यानी अज्ञानी के, छोटे बच्चों के नहीं, समझानो काई। ते सत तपस्वी जो भाषा ए साचा तपस्वी छे, साचा तपस्वी छे, एकला आहार छोड़या पानी छोड़या अने तपस्वी थई गया एम नथी, ए तपस्वी नथी, आ तो साचा तपस्वी एने कहे छे एम कहे छे। ओला बधा खोटा तपस्वी, हाँ हाँ, ये हमें तो पहले पता ही नहीं था, ये अमेरिका जाने के बाद ये सब पता चलने लगा। वो हम जाते थे तो हम अपना पर्युषण का पहला दिन दश लक्षण का, और उनके वो अंतिम दिन होता है पारणा वगैरह, वो होता है वो तपस्वी सब उनका बहुत सत्कार वगैरह करते हैं, सभी सेंटर्स में बड़े बड़े वहाँ सेंटर्स होते हैं, दो दो हजार लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, ज्यादा ही, क्योंकि वहाँ उनके उनके हॉल भी इतने सारी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से वहाँ सारे, और वहाँ उनका सत्कार होता है, जो कोई किसी ने आठ तप उपवास किए, किसी ने क्या किया, बहुत बड़ा, और हमको फिर आग्रह करते हैं आप जरा बोलो इस पर कोई, उनका सत्कार में हमसे मत बुलवाओ हम खोटी बात करेंगे नहीं, खोटी प्रशंसा करेंगे नहीं उनकी, ख्याल में आई बात। और सत्य सुनने के लिए वो अभी राजी नहीं है, जो सुनना चाहते वो हमारे लेक्चर में आके बैठे, क्योंकि 10 दिन तो हम जाते हैं और दिन में हमारी वहां पर भी हम 6-6 घंटे की कंडीशन थी, आपको तो मालूम है, जहाँ 6 घंटे सुनते थे उन्हीं सेंटर्स में हम जाते थे। पहले तो लोग कहते अमेरिका जैसे 1 घंटे आने की मुश्किल है, आप 6-6 घंटे की बात करते हैं, मत बुला, हमने कहा अग्रह पकड़ा है। वर्षित तब बोलते हाँ हाँ आते हैं हाँ, वहाँ तो कितने ही सेंटर्स में ऐसा है कि साल भर आगे पहले के उनको पता चलता है कि हम इस दौरान बुलाएंगे, तो वो पूरा 1 वीक और 2 वीकेंड इतनी छुट्टी, क्योंकि छुट्टी लेके रखते थे, क्योंकि उनके मान लेते ना साल भर में इतनी छुट्टियां मिल सकती है, उसमें से इतनी छुट्टियां हमारे लिए रखते थे। और बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऑर्डिनरी पीपल नहीं, वो नॉर्थ कैरोलिना में तो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो सबसे बड़े है, यानी पूरे अमेरिका में उनका 4th-5th नंबर लगता है, इतना पूरी यूनिवर्सिटी के चीफ डॉक्टर है वो। और वो ऐसे सामने बैठकर नीचे नोट लिखते हैं अपने सामने कुर्सी पर भी नहीं बैठेंगे, इतनी उनमें विनय और शालीनता। हाँ, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर, वो भी चीफ वहाँ के साइकेट्रिस्ट है, वो नॉर्थ कैरोलिना में वही 5-6 तो डॉक्टर्स है, एक जन तो उनके तो कहीं पर भी उनका टाइम एडजस्ट हो सकता है। वो पैथोलॉजीज में कुछ काम करती थी, सुबह 5:30-6 बजे जाती थी जॉब को और 9:30 बजे तक 10 बजे तक आ जाती, तो उनके लिए फिर हमने 10 से आगे प्रोग्राम रखा था कि पूरे 6 घंटे दिन के वो अटेंड कर सके। यानी जिनको जिज्ञासा है, धगस है, वो इतना। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो सब सुविधा है, नौकर चाकर मिलते हैं, वहाँ इकट्ठे किसी सेंटर में इकट्ठे होते हैं, किसी के घर में होते हैं, घर भी बड़े बड़े होते हैं, भोजन की एक जगह सबकी व्यवस्था करते हैं, भले वो फिर घर से लेके आएंगे या कैसे भी व्यवस्था करेंगे, मैनेज करते बहुत अच्छी तरह से करते। वॉशिंगटन में आपने देखा होगा ना 70-80 लोग वहां आते थे, वहां ये तो बहुत भीड़ कहलाती, बहुत भीड़, क्योंकि 10-12 आए तो बहुत हो गया ऐसा वहां का। हाँ, बहुत है। हाँ, देखो हम यहाँ आए थे ना 100 नंबर के पेज पर, ये उपवास वगैरह करे वो तपस्वी ने वॉशिंगटन में थे, आ तो साचा तपस्वी एने कहे छे, हम कहे छे ओला बधा खोटा तपस्वी। हाँ हाँ, जे आत्माना अंतर पूर्ण स्वरूप ना ध्यान मा, देखो अंतर स्वरूप तो परिपूर्ण है, उस परिपूर्ण स्वरूप का ध्यान है, उसी को जानते रहना है, एने ध्येय करीने पड़ो छे ए साचो तपस्वी। ध्यान किसका करना है, ध्यान करने में तो हम बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, किसना किसका चाहन चलता है ना, वो तो आत्म ध्यान रुद्र ध्यान सब चलते रहते हैं, तो यहाँ हमें ध्यान का ध्येय निश्चित करना है, वो क्या है, मेरा स्वभाव भाव जो परिपूर्ण ज्ञान और आनंद का पिंड है, तो उसको ध्येय करके उसके ध्यान में लीन होना है। हम विकल्प का ध्यान करते हैं, शरीर का ध्यान तो रखते ही रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं और कुछ कुछ ध्यान रखते हैं, तो यहाँ ध्येय पहले नक्की करना है कि हमें इसका ध्यान करना है, यानी उसके बारे में जल्प नहीं करना। पहले बात आई थी ना अंतर और बहिर्जल्प सब, अभी अलम उससे बहुत छोड़। तपस्वी एटले साचा मुनि, एम तप एटले मुनि पनु गण्यु छे ने, तप कल्याणक नहीं भगवान नु, तप कल्याणक कहो के मुनिपनु कहो, आ साचु मुनिपनु, साचु मुनिपनु आ छे एम कहे छे। तो अंतरंग में स्थिरता है उसी को कहेंगे वो तपने, तपना, सम्यक तप तपना, ये मुनियों को ही तप कहा है, सामान्य श्रावकों को 4th-5th गुणस्थान वाले को नहीं कहा, क्योंकि उनकी इतनी स्थिरता नहीं है, इसलिए उनका ध्यान कैसा इतना दृढ़ है, उसमें स्थिरता बहुत है, इसलिए उसका नाम है तप। परंतु जो 4th-5th गुणस्थान वाले भी वही करता है कि राग से रहित अपने स्वभाव का वहाँ ध्यान करते, उसका अनुभव करते हैं, परंतु उनकी स्थिरता भी इतनी ही नहीं है, और जिसको कहेंगे डेप्थ उसकी वो भी इतनी नहीं है, टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा टाइम बैठा मैं आत्मा में स्थिर हुआ ऐसा नहीं उसका अर्थ है, उल्टा तो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में उसका काल छोटा छोटा हो जाता है, परंतु स्थिरता बहुत बढ़ती है।
आपने क्या बताया
कि जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान आते हैं वो गुणस्थान का काल छोटा छोटा होते जाता है।
देखो छठे से सातवें का काल आधा, सातवें से आठवें का संख्यात्वे भाग प्रमाण कहा, आठवें से नौवें भी संख्यात्वा भाग, नौवें से दसवां संख्यात्वा भाग, उससे बारहवां संख्यात्वा भाग, और अभी तेरहवें भी चला जाएगा। तेरहवें में लंबा काल तक रह सकता है, जितनी आयु बाकी है उतने तो रहना है। अंतर्मूर्त मिनिमम रह सकता है कोई जीव, क्योंकि जिसको अभी चौदहवें का काल करके मुख जाना है, जिसकी आयु इतनी बाकी है, जिसकी आयु बहुत बड़ी बाकी है, वो तेरहवें में लंबा काल रहेगा। जो श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते हैं ना, छठे से सातवें में गया, फिर सात आठ नौ दस ग्यारह, फिर दस नौ आठ सात, तो सात से लेकर फिर सातवें में आया, वो पूरा काल छठे से छोटा है। और छठे गुणस्थान की मैं पौने सेकंड की नींद कहते हैं, अभी उससे भी छोटा काल वो ले लो, छोटा है, अल्प है, कम है, कम है। उसमें तो कितने कितने प्रोसेसेस हम देखते हैं, क्या क्या होता है ना, नौवे में तो कितनी बातें होती है उसमें, हर बार कहते हैं ना संख्यात हजार बार, छंख्यात हजार बार, क्या स्थिति कांड घात हुए, अनुभाग कांड घात हुए, वो हमने गिने थे एक बार यहाँ, तो उसका अर्थ करोड़ों करोड़ों बार होता है। और ऐसे अंतर्मूर्त एक अंतर्मूर्त के अंदर है, और वो अंतर्मूर्त भी कितना छोटा है, तो केवल ज्ञानी का एक समय का ज्ञान कैसे होगा ये। देखो पेज नंबर 100 पर नया पैराग्राफ, एवा देदीप्यमान मुक्ति वारांगना ने पूर्णानंद प्रभु एवा आत्मा ने ध्येय बनावी ने ध्यान मा लीधो विषय करियो, विषय करें उसी को ध्येय बनाया, उसी को जानते रहा, ध्यान करके यानी क्या, उसी को जानते रहा, उसी को विषय बनाया, पोताना सम्यक ज्ञान मा ध्रुव ने विषय बनायो, समझ में आते ना अर्थ क्या, अने ध्यान करियूं एवा ध्यानी मुनि देदीप्यमान मुक्ति वारांगनाओं ने मुक्ति रूपी स्त्री ने प्राप्त करे छे। लो ए केवल ज्ञान रूपी देदीप्यमान शोभित मुक्ति एवी वारांगना एटले स्त्री मुक्ति रूपी स्त्री ने प्राप्त करे छे। भाषा कहो एवा साचा मुनि ने देदीप्यमान मुक्ति वारांगना केवल ज्ञान अनंत आनंद एवी मुक्ति रूपी स्त्री एने आवा साचा ध्यानी आत्मानु ध्यान करनारा ध्यानी मुक्ति ने प्राप्त करे छे। कहो समझानु काय, आ पेलो व्यवहार लीधो पण ध्यान तो आनु करे छे, आहार लीधो हस्ताग्रथी पण ध्यान तो अहीनु त्यां छे, त्यां नथी के आहार लेवो छे ने फलानु छे ने आहा हा। 63मी गाथा थई, अभी 64 नंबर की गाथा पहले पढ़ लेते, लास्ट टाइम कुछ उसमें मिस्टेक थी ना, पोथई कमंडलाइम गहन विसग्गेसु पयत परिणामो आदावण निखेवण समिधि होदित्ति निंदिठा। पढ़ेंगे इसको, पोथई कमंडलाइम गहन विसग्गेसु पयत परिणामो पुस्तक कमंडलादि ग्रहण विसर्गयो प्रयत्न परिणाम आदान निक्षेपण समिति भवतीति निर्दिष्टा शास्त्रादि ग्रहता मूकता मुनिना प्रयत परिणामने आदान निक्षेपण समिति करे छे आगम विषे। अभी आदान निक्षेपण समिति उसका भी वर्णन चलेगा। अभी तक कौन कौन सी समिति देखी मनीषा, एरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, अब ये आदान निक्षेपण। आदान और निक्षेपण, लेना रखना, क्या अभी उनके पास क्या है, एक तो कमंडल है, पीछे से वो परिमार्जन भी करते हैं, उसमें कोई पन्ना भी पलटना है तो पहले पीछे से ऐसा करके फिर उसको पलटाएंगे, इस तरह से नीचे रखना है, कमंडल रखना है, तो हर जगह ये तो उनके तो ये तो क्रियाएं सब होती है। तो अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। पुस्तक कमंडल, ये ब्रैकेट में जो कमंडल बराबर करो, कमंड म पूरा चाहिए, म पूरा चाहिए, कमंडल आदि वो म आधा करके उसको जोड़ा है ना, पुस्तक कमंडल आदि ग्रहण विसर्ग यो हो, पुस्तक कमंडल वगैरह लेवा मुकवा संबंधी प्रयत्न परिणाम, प्रयत्न परिणाम यानी वो सावधानी पूर्वक, क्योंकि जीवों की विराधना न हो इसलिए वो सावधान है, ते आदान निक्षेपण समिति ही, आदान निक्षेपण समिति भवती ने छे इति निर्दिष्टा एम कहूं छे, किसने कहूं छे, कोने कहूं छे, हाँ मीना, इति निर्दिष्टा भगवान ने कहा, ये मार्ग बताने वाले कौन है, सर्वज्ञ भगवान मुनिराज उनकी दुआएं दे रहे कि उन्होंने ऐसा बताया है, हम कहते ऐसा नहीं, ऐसे भगवान ने बताया है। ये बात ऐसे गोमट सार आदि ग्रंथों में समय सार में बहुत जगह ऐसा आई। अहीं आदान निक्षेपण समिति नो स्वरूप कहू छे, हाँ यानी अभी कोई चीज उठाना है रखना है उसकी बात करते, लेना रखना,
आदान यानी लेना और मुकु यानी रखना।
देखो अहीं आदान निक्षेपण समिति नो स्वरूप कहू छे, आ अपरहत अपहत नहीं, वो अपहत है, रह रह बरोबर, रह बरोबर नीचे फुटनोट में लिखा है बराबर है, अपहत वैसा रह चाहिए, हृदय वाला रह। आ अपहत संयमियों ने, ये अपहत संयमी किसको कहना, वो नीचे पड़ते हैं, दो आते हैं, एक उपेक्षा संयमी और एक अपहत संयमी, तो अपहत संयमी कौन है, तो अपहृत संयम वाला मुनि, उसको क्या अलग नाम है, अपवाद संयम व्यवहार न, एक देश परित्याग अपहृत संयम, अपहृत संयम करते हीनो इन्हें ओछप वालो संयम, उसी का दूसरा नाम है सराग चारित्र, अने शुभोपयोग, किसका, मुनियों का शुभोपयोग हो, चाहे जिसका नहीं, ए बधा एकार्थ छे। उपेक्षा संयमी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि दो लाइन के बाद उसकी बात आने वाली है, उपेक्षा संयम वाला मुनि उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्ग, यानी ये अपवाद मार्ग है वो उत्सर्ग मार्ग है, अपवाद मार्ग को अब ये व्यवहार जो है वो क्या है, छठे गुणस्थान में जो शुभोपयोग का काल है, और मुनि की अंतरंग स्थिरता है वो उपेक्षा संयम होता है उनके, उसको उत्सर्ग कहते हैं। निश्चय नय सर्व परित्याग उपेक्षा संयम वीतराग चारित्र ने शुद्धोपयोग ए बधा एकार्थ छे, ऊपर शुभोपयोग कहा था उसको अपहृत संयम ही कहा, और यहाँ शुद्ध उपेक्षा करना है, उसके प्रति वो उदासीन है, अन्य चीजों के प्रति अपने स्वरूप में एकाग्र है, अन्य की उपेक्षा है। अभी हम ऊपर का जो टीका लिखते हैं वहां से पढ़ेंगे, आ अपहृत संयमियों ने संयम ज्ञानादिकना उपकरणों, क्या कहते हैं, मुनियों के पास तो अन्य कुछ परिग्रह नहीं है, जो कुछ है वो उनके परिग्रह है, किसके लिए, संयम का पालन करने के लिए और ज्ञानादि के लिए। संयम पालन के लिए क्या है, एक पीछे और कमंडल है, और ज्ञानादि के लिए पुस्तक है, बस इतना ही, और परिग्रह उनके नहीं होता, यानी उसको भी परिग्रह नहीं कहते, संयम और ज्ञान के उपकरण कहते हैं। तो कहते अपरत संयमियों ने संयम ज्ञानादिकना उपकरणों लेती मुक्ति वक्त, आपने बताया ना आदान निक्षेपण है ना, लेना रखना, उत्पन्न थती સમિતિનો પ્રકાર કહ્યો છે. ઉપેક્ષા સંયમીઓને ઉપેક્ષાની એવો શબ્દો ઉપયોગ વાલે પુસ્તક કમંડળ વગેરે હોતા નથી, તે પરમજીન મુનિઓ એકાંતે એટલે સર્વથા નિષ્ફળ હોય છે, તેથી જ તેઓ બાહ્ય ઉપકરણ રહિત હોય છે. યહાં મુનિઓ મેં એસી બાત લી, જૈસે અભી તીર્થંકર કા જીવ વગેરે જો હૈ ઉનકે લિયે તો વહાં કોઈ પુસ્તક યા જો કોઈ કમંડલ તો હોતે હી નહીં ઉનકે લિયે. और ये इस तरह से हाँ उपेक्षा संयमी है. परम जिन मुनियों लिखा है ना, अभ्यंतर उपकरण भूत, ये अभ्यंतर उपकरण, ये बाह्य उपकरण तो संयम पालने के लिए और जो ज्ञान के उपकरण पुस्तक वगैरह. अंतरंग उपकरण क्या है? अपने ज्ञान द्वारा अपने स्वभाव का अनुभव करना है. अभ्यंतर उपकरण भूत નિજ પરમ તત્વને પ્રકાશવામાં ચતુર, પ્રકાશવામાં જાણવામાં ચતુર, એવું જે નિરૂપાધિ સ્વરૂપ સહજ જ્ઞાન. દેખો હમારા કોનસે ઉપકરણ સે હમ આત્મા કા અનુભવ કરેંગે? સહજ જ્ઞાન સે. હા, તેના સિવાય બીજું કાંઈ તેમને ઉપાદેય નથી, એને દૂસરી કિસી કે કોઈ બાત હી નહીં હૈ. શુદ્ધોપયોગ કી બાત હૈ તો અપને અંતરંગ મેં અપને જ્ઞાન કે દ્વારા સ્થિર હો ગયે, ઉસી કો જાનતે રહેતે. અપરત સંયમ ધરોને પરમાગમના અર્થનું ફરી ફરીને પ્રત્યભિજ્ઞાન થવામાં કારણભૂત એવું પુસ્તક તે જ્ઞાનનું ઉપકરણ છે. દેખો ક્યાં ક્યાં શબ્દ આયે યહાં પર. અપરત સંયમ ધરોને જબ વો શુભોપયોગ મેં હૈ મુનિરાજ, तो परमागम यानी जो शास्त्र है, आगम है, उसके जो अर्थ का फरी फरी ने प्रत्यभिज्ञान. ये प्रत्यभिज्ञान नाम सुना है दक्षाबेन आपने? नहीं. हाँ, आप क्या कहते हैं? मति ज्ञान का भेद है. कैसा भेद है?
जोड़ रूप
ज्ञान. देखो आपने सुना होगी जैसे ये इंद्रिय ज्ञान है वो भी मति ज्ञान है. मति ज्ञान से इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं उसको भी मति ज्ञान कह रहे हैं. ये आत्मा के अनुभव की बात, उसको अभी यहाँ मत लेना. तो ये मति ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान है उसको व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहते, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष. हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा, अरे हमने हमने कानों से प्रत्यक्ष सुना. प्रत्यक्ष नहीं है जैसा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसको प्रत्यक्ष कह देते हैं. साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वो क्या है? इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा जानना होता है. अब जाना हुआ हमें स्मरण में भी आ सकता है, उसको क्या कहते हैं? स्मृति. फिर स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान. अभी स्मृति यानी कोई चीज हमने देखी, ऐसी ये चीज देखी. अब देखने के बाद, अरे इसके पहले मेरे पास ऐसा गुलाबी कलर का था, वो अभी टूट गया, या ये मेरे पास ऐसा है, उनके पास वो गया. यानी जो सामने वाले जो चीज है उसका ज्ञान अभी वर्तमान में हो रहा है, और वो पहले वाला या अन्य किसी चीज के साथ उसका भी ज्ञान है हमें, उसके साथ ये हमारी कंपेरिजन चलती है, या इसके साथ सदृश हो सकता है या उसके विदृश विसदृश भी हो सकता है. उसके भी बहुत सारे भेद है प्रत्यभिज्ञान के. प्रत्यभिज्ञान क्या है? अभी पुस्तक में पढ़ रहे हैं तो बारंबार वो जो अर्थ है हमने बहुत बार देखा है, तो उसका स्मरण दोबारा हो जाता है. केवल स्मरण होना अलग बात है, और यहाँ प्रत्यभिज्ञान को लिया. अभी ये वाक्य फिर पढ़ते हैं. ये पुस्तक वो कैसा है कि अपरत संयम धरो ने પરમાગમના અર્થનું ફરી ફરીને પ્રત્યભિજ્ઞાન થવામાં કારણભૂત. એને જો અર્થ અમે માલુમ હૈ, ગ્રંથ અમને પહેલે પઢે હૈ, ઓર ફિર દુબારા હમ પઢતે હૈ ઉસકો, તો વો વહી બાત ફિર દુબારા અપને સ્મરણ મેં આતી હૈ. એવું પુસ્તક તે જ્ઞાનનું ઉપકરણ છે. શૌચનું ઉપકરણ કાય વિશુદ્ધિના હેતુભૂત કમંડળ છે, और संयम नु उपकरण हेतु पींची छे. आ उपकरणों ने लेती मुक्ति वक्ते उद्भवती यानी होने वाली प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि. प्रयत्न परिणाम यानी उसमें सावधानता पूर्वक जो विशुद्धि यानी वहां जो शुभ उपयोग है, तेज आधान ने आदान चाहिए. आदान निक्षेपण समिति छे। एम शास्त्र मां कहूं छे, है ना, भगवान की वाणी में ऐसा आया है। अब इसके ऊपर प्रवचन। नीचे देखो एक लाइन है ना, उसके 64 के नीचे लिखे, एवं निधिष्ठान कहूं ने, निधिष्ठान क्या है,
कहां पढ़ रहे हैं आप?
नीचे है वही
श्लोक के 101 पे, नीचे
वाला श्लोक के नीचे,
श्लोक के नीचे एक लाइन है, आदान निक्षेपण का दूसरा नाम मालूम है, आदान निक्षेपण समिति। हाँ, प्रतिष्ठापन समिति ऐसे कुछ नाम।
पांचवी
है, अच्छा प्रतिष्ठापन का नहीं, इसके लिए और एक नाम है। आने आएगा तुम्हें बताए, प्रतिष्ठापन तो पांचवी हो गया, आदान निक्षेपण के लिए और कुछ नहीं। भगवान एम कहूं छे, आगम एम कहूं छे,
ये जो बात हो रही है यहाँ, जड़ हाँ। क्रिया भी हो रही है और शुद्ध भाव भी हो रहा है, ये यहाँ जो बात कर रहे हैं
तो शोभा एक मिनट, हाँ
वो किसकी बात कर रहे हैं, माने जड़ की क्रिया की
कहाँ पर,
ये जो लास्ट लाइन, लेती मुक्ति वक्ते उद्भवती प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि तेज आदान निक्षेपण समिति।
अभी आप बोलो, आप बोलो,
उनका तो स्वभाव ही है, हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन माने उसके साथ उसका खाली निमित्त निमित्त संबंध ही है।
बिल्कुल, क्योंकि जो जड़ की क्रिया जड़ के अपने कारण से हो रही है, जीव का क्या प्रयत्न है, प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि, शुभ भाव रूप विशुद्धि, ये शुभ भाव है उनकी, विशुद्धि नहीं शुभ भाव है। क्या शुभ भाव है, कि वो सावधान है कि वहाँ कोई जीवों की विराधना नहीं हो रही, चीज मुक्ति और लेती वक्ते वहाँ कोई जीवों की विराधना नहीं है, इस प्रकार का वहाँ शुभ भाव है। बस शुभ भाव के काल में उसमें वो सावधान है, शुद्धोपयोग में तो वो सवाल ही नहीं बाहर किसी चीज में कुछ करने धरने का, है ना। देखो अभी पेज नंबर 102 पर आते हैं, टीका का प्रवचन अही। हाँ हाँ शोभा अभी बोलो आप। नहीं नहीं वो प्रतिष्ठापन उसके बाद में आता है, वो पांचवी समय वो अलग है, प्रतिष्ठापन अलग है, मुझे और एक कुछ जब आएगा नाम याद तो बताऊंगी। या प्रतिष्ठापन के लिए दो नाम हो गए कोई, हाँ हाँ उसके लिए दो नाम है, बराबर उसके दो नाम है, वो कुछ बराबर
प्रक्षेपण।
नहीं 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 वो तो ये क्या है, मलमूत्र विसर्जन के बारे में है ना वो। देखो पेज नंबर 102 पर, वो बाद में आने वाली है, उसकी बात बात करेंगे। हाँ अभी हम टीका की, टीका का प्रवचन नंबर 102 पेज। अही आदान निक्षेपण समिति नो स्वरूप कहूं छे, आ अपरत संयमियों ने संयम ज्ञानाधिक, यानी संयम के और ज्ञान आदि के उपकरणों लेती मुक्ति वक्ते व्यवहार संयमीनी वात छे, जेने विकल्प उठ्यो छे, है ना, विकल्प उठता है तो किस प्रकार का है उसकी बात है यहाँ पर। आत्माना अनुभव सहित अंदर शांति तो छे, अनुभव सहित शांति अने वितराग परिणति तो है, पण अभी शुद्ध उपयोग में नहीं है, शुभ परिणाम है उनका। पण शुभराग विकल्प उठ्यो छे तेने अपरत संयमी कहे छे, अपवादी संयम, अपवाद संयम भी कहते उसको। शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणति कहा मैंने, शुद्धोपयोग में नहीं है, शुद्धोपयोग यानी गुणस्थान सातवा, शुभोपयोग है, परंतु कौन सा जीव है, शुद्ध परिणति बिना वाला नहीं, मिथ्या दृष्टि भी है, ऐसे व्यवहार आचरण तो करता है, परंतु उसको ये समिति का नाम नहीं देंगे, यही कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं आत्माना अनुभव सहित अंतर शांति तो छे, इसका अर्थ शुद्धोपयोग नहीं, शुद्ध परिणति लेना, वो अनुभव हुआ है वो तो क्या, वो मिट नहीं जाता है वहां पर, वो तो चल रहा है, पर शुभ राग विकल्प उठ्यो छे તેને અપરત સંયમી કહે છે, અપવાદી સંયમ. નીચે છે ને, હમને પડા થાય એ નીચે ફૂટનોટ. વ્યવહારને એકદેશ પરિત્યાગ, અપરત સંયમ, એને હીનો ઓછો પાળો સંયમ, સરાગ ચારિત્ર અને શુભો ઉપયોગ, એ બધા એકાર્થ છે. અને એક ઈ અર્થ બતાને વાલે અલગ અલગ શબ્દ હે. જો હવે અહીં ખૂબી શું કહે છે કે મુનિને ત્રણ કષાયનો અભાવ તો છે અને અનુભવ સમ્ય દર્શન તો સાથે છે જ. હવે એને શુભભાવનો વિકલ્પ આવે છે, એને વ્યવહાર સંયમી કહ્યો છે. એવો નિશ્ચય તો છે ભાઈ, ઓલો વ્યવહાર એટલે સમ્ય દર્શન અને શાંતિ નથી, અને આ વ્યવહાર છે એની વાત અહીં છે જ નહીં. એને બિના સમ્ય દર્શન કે બસ બાહ્ય મેં કુછ આચાર પાલ રહા હૈ ઉસકો તો યે નામ ભી નહીં દિયા હૈ સંયમ વાળા. મુમુક્ષુ, છઠ્ઠા વાળાને અપરત સંયમી કીધો છે. ઉત્તર, હા, છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળા અપરત સરાગ સંયમી, વ્યવહાર નયનો સંયમી, આશ્રવ વાળો સંયમી કહેવામાં આવ્યો છે. પાછું આત્મજ્ઞાન નથી, અનુભવ નથી, શાંતિ નથી, ત્રણ કશાનો અભાવ નથી, એ વ્યવહારને વ્યવહાર કહેતા નથી. ઉસકે આચરણ કો વ્યવહાર નામ નહીં દિયા જાતા, એ તો અજ્ઞાની છે. અબ જો એસે મુનિ કે આચરણ પાલ રહા હૈ, આત્મજ્ઞાન નહીં હૈ, ઉસકો અજ્ઞાની કોણ કહેગા? વો તો સમાજ તો ઉસકે ત્યાગી હૈ, સંયમી હૈ, એસે હી કહેંગે.
યહાં જ્ઞાન કી અપેક્ષા સે અજ્ઞાની કહાં, શ્રદ્ધા કી અપેક્ષા સે ક્યા કહેંગે?
મિથ્યા દ્રષ્ટિ, રાગ નો વિકલ્પ એનો કરતા થાય છે. કરતા હોકર વો મેં ઇસ તરહ સે એસે વો સાવધાનથી વો પ્રયત્ન જો કહા વો તો યહાં તો કરતા હોને વાલા, વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ ઉસકા કરતા હોકર કર રહા હૈ. ઓર જો જ્ઞાની હૈ ઉનકે વો સહજ આતે હૈ. પહેલે આયા થા શબ્દ હઠ વગરનો, એસા શબ્દ આયા થા. તો કહેતે રાગનો વિકલ્પ એનો કરતા થાય છે, તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એને વ્યવહાર કેવો? એને ઉસકી ક્રિયા કો વ્યવહાર નામ નહીં દિયા જાતા, ક્યુંકિ વહા નિશ્ચય કા અતા પતા નહીં હૈ. તો નિશ્ચય કે સહચર હોગા ઉસકો વ્યવહાર કહેને મેં આતા હૈ. અજ્ઞાની કે જો ક્રિયા હૈ ઉસકો વ્યવહાર નામ નહીં દિયા જાતા. અહીંયા તો અપરત સંયમીને એટલે કે જે શુભોપયોગમાં આવ્યો છે, હું ચીજને લેવા મૂકવાના ભાવમાં યત્ન કરે છે એવા શુભરાગી, અંતરમાં ત્રણ કષાયની નિરાગી દશા છે, નિરાગીને રાગરહિત એવા સાધુને જે વિકલ્પ આવ્યો છે એને અપરત સંયમી કહે છે. જો ને કેટલો ખુલાસો કરે છે. પહેલી એક ગાથા આવી હતી, ઉસમે નિરાગ ની દીર્ઘ ક્યાં હતા? નિરાગ શબ્દ મેં આપને પૂછા ભી થા, ઇસમે નિરાગ કહાં થા? યહાં નિરાગ કરતે રસ્વ લિયા, શાયદ દીર્ઘ હોના ચાહિયે, નિરાગી દશા. નિર્મલ વગેરે મેં કહી શકતા નિરસ્વ હોતા હૈ, પણ યહાં નિરાગ લિખા હતા ઉન્હોને ઉસ ગાથા મેં. ઓર અપની અપની હા અપની ચર્ચા ભી હુઈ થી તભી, દૂસરી પુસ્તક મેં શબ્દ આયા થા નિરાગ શબ્દ. અભી નીચે કા પેરેગ્રાફ પડેંગે. સંયમ જ્ઞાનાદિકના ઉપકરણો લેતી મુક્તિ વખતે, જુઓ સંયમ અને જ્ઞાન છે તો ખરું, અંતરનો સંયમ પણ છે અને અંતર સમ્યક જ્ઞાન પણ છે. એના ઉપકરણો લેતી મુક્તિ વખતે ઉત્પન્ન થતી સમિતિનો પ્રકાર કયો છે? હવે એ બી બાહ્ય ઉપકરણ કહ્યું, અંતરંગ મેં ઉત્પન્ન તો ઉન્હોને જ્ઞાન કો લે લ્યા. લો એને પુસ્તકાદી લેવા મૂકવામાં એ ઉપકરણ છે ને, પુસ્તક કમંડળ વગેરે, એ ઉપકરણની વાત છે. જેને પોતાનો શુદ્ધ અનુભવ સમ્યક દર્શન છે અને જેને સંયમ અને જ્ઞાન અંતર પરિણમિત થયું છે, મીરસ્વ પરિણમિત, એને જ્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં શુભરાગ આવે છે, લેવા મૂકવાની ચીજને પુસ્તક લેવું મૂકવું ए क्रिया तो जड़नी छे, आपके प्रश्न का उत्तर, पण शुभ भाव नो विकल्प उठे छे, ए शुभ भाव वाला जीव ने सराग संयमी, व्यवहार नैना संयमी, अपरत संयमी, अपवादी संयमी, एक देश परित्याग कहे छे। जो अशुभ राग छूट्यो छे, शुभ राग छूट्यो नथी, तो एक देश परित्याग छे। समझ में आई बात? पंचम गुणस्थान मां एक देश परित्याग अने आ एक देश परित्याग बेमा फेर छे। वहां एक देश परित्याग किसको होता? तो स्थावर की हिंसा सभी नहीं हो, त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, उस अपेक्षा एक देश कहा था। यहाँ एक देश कहने का अलग हेतु है, अलग विवक्षा जुदी है। सम्य दृष्टि श्रावक आत्मानो अनुभवी, एमा एक देश राग नो त्याग छे, तो ए एक देश संयमी कहवाय छे, ए बीजी चीज छे। अहीं तो सातमी भूमिका नो अभाव छे, सर्व राग ना अभाव रूप निर्विकल्प उपयोग नो अभाव छे, अने अशुभ राग गयो छे, अने शुभ राग मा आव्या, अने शुद्ध उपयोग नहीं है, अशुद्ध उपयोग में है, परंतु उसमें अशुभ भाव नहीं है, शुभ भाव है, तो इन्हें एक देश त्यागी कहेवामां आवे छे। समझानुं काई? एक देश परित्याग, अपरत संयम एटले हीनो ओछो पाळो संयम, छठा गुणस्थान मां बाह्यमां नग्न दशा। समझानुं? अभ्यंतरमां दर्शन ज्ञान अने चारित्र प्रकट्युं छे, पण पूर्ण शुद्ध निर्विकल्प उपयोग रूप चारित्र नथी। ख्याल में आई बात? पूर्ण शुद्ध उपयोग रूप नहीं है, तो इन्हें यहाँ न्यून हीन संयम कहो, सराग चारित्र, इसी को सराग चारित्र कहते हैं। शू करे? अहीं तो अंतर आत्मानो अनुभव अने अंतर स्थिरता शांति तो छे, एमां सप्तम गुणस्थान योग्य निर्विकल्प उपयोग नथी, अने राग भाग ली लिखा, भाव चाहिए ना, अने राग भाव छे, तो एक देश त्याग कयो। आ वात छे, पक्ष थी वात करे तो नहीं बेसे भाई, आ तो वस्तुनो स्वभाव एवो छे। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।